पिंकेश कुमार की आवाज में बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के सिद्धांत अध्याय सरकार के अंग व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसका नाम सरकार है। डॉक्टर गार्नर। सरकार एक ऐसी निराकार संस्था होती है जिसके द्वारा कार्य राज्य एक ऐसी निराकार संस्था होती है जिसके द्वारा कार्य नहीं किया जाता। राज्य अपनी प्रभुसत्ता शक्ति का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सरकार से हमारा तात्पर्य उन सब व्यक्तियों, संस्थाओं और साधनों से होता है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है तथा उसे कार्य रूप प्रदान किया जाता है। सरकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए गार्नर लिखते हैं, राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसे सरकार कहते हैं। सरकार के अंग। सभी व्यक्तियों द्वारा सरकार को एक से अधिक अंगों में विभाजित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकार को व्यवस्थापन तथा शासन विभाग इन दो अंगों में विभाजित किया जाता है। कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकार को पांच या छह अंगों में विभाजित करने का प्रयत्न किया जाता है। परंतु समान धारणा यह है कि प्रमुख रूप से सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाने और राज्य की नीति को निश्चित करने का कार्य करती है। कार्यपालिका इन कानूनों को परिणत कर शासन का संचालन करती है और न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून के आधार पर न्याय प्रदान करने और संविधान की व्याख्या करने का कार्य करती है। व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर। व्यवस्थापिका का महत्व। सरकार के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। इनमें तीनों का व्यवस्थापन विभाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापन विभाग ही उन कानूनों का निर्माण करता है जिसके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है, न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है और इन दोनों विभागों के कार्यों का मार्ग निश्चित करती है। व्यवस्थापिका विभाग केवल कानूनों का निर्माण नहीं करता वरन प्रशासन की नीति भी निश्चित करता है और संस्थात्मक शासन व्यवस्था में तो कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण भी करता है। संविधान में संशोधन का कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि व्यवस्थापना सरकार के दो दूसरे अंगों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। अब व्यवस्थापिका के कार्य, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। व्यवस्थापिका के कार्य बहुत सीमा तक शासन पद्धति के रूप में निर्भर करते हैं। एक तंत्र, राजतंत्र या अधिनायक तंत्र में व्यवस्थापिका के विशेष कार्य नहीं होते, परंतु लोकतांत्रिक राज्यों में व्यवस्थापिका की शक्ति कार्य बहुत अधिक होते हैं। लोकतांत्रिक राज्यों में संस्थात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिका की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। संस्थात्मक शासन में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जैसे जबकि अध्यात्मक शासन में ऐसा नहीं है। समान रूप से लोकतांत्रिक शासन में व्यवस्थापिका के द्वारा निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, कानून निर्माण व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इनमें विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है, बाद बैठ करता है, उन्हें स्वीकार कर कानून का रूप प्रदान करता है। उनमें पुराने कानून संशोधन, परिवर्तन तथा समाप्त भी कर सकते हैं। दूसरा, संविधान में संशोधन का कार्य करती है। तीसरा, विमर्शात्मक कार्य करती है। व्यवस्थापिका विचार विमर्श करती है। पार्लियामेंट का शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसकी फ्रांसीसी शब्द पार्लियामेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है विचार करने के निमित्त सभा है। चौथा, आर्थिक कार्य। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका कानून निर्माण के साथ साथ सार्वजनिक राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखती है। पांचवा, प्रशासन संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका सीधे तौर पर प्रशासनिक कार्य में भाग नहीं लेती, परंतु प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। वे संस्थात्मक शासन में व्यवस्थापिका प्रश्नों, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविस्ताव प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है। छठा, न्याय संबंधी कार्य। अनेक देशों में व्यवस्थापिका न्याय संबंधी कार्य भी करती है। फ्रांस की काउंसिल ऑफ रिपब्लिक, अमेरिका की कांग्रेस और भारत की संसद को उच्च कार्यपालिका पदाधिकारियों पर अभियोग लगाने और उनका निर्णय का अधिकार प्राप्त है। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका का उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स तो अपील का उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है। सातवां, निर्वाचन संबंधी कार्य। दोनों सदन मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका न्यायाधीशों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव करती है। भारत में संघीय सदस्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। आठवां, विधानमंडल द्वारा समय समय पर विशेष कार्यों की जांच हेतु समितियों और आयोग की नियुक्ति करती है और इनके माध्यम से शासन की छानबीन करती है। नौवां, जनभावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका ऐसा स्थान है जहां पर जनता के प्रतिनिधि शासन का ध्यान जनता के कष्टों को आकर्षित करते हैं, इसे जनता का रंगमंच कहा जाता है। व्यवस्थापिका का संगठन। व्यवस्थापिका का संगठन दो रूप में किया जाता है, या तो एक सदन या दो सदन। अधिकांश देशों में एक सदन की व्यवस्था की गई थी, परंतु बाद में दो सदनों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान देश में कुछ छोटे मोटे देशों को छोड़कर सभी देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था के पक्ष में तर्क ऐसा पहले होता कि यह द्वितीय सदन प्रथम सदन की मनमानी पर रोक करती है, दूसरा अविचारपूर्वक कानून निर्माण पर रोक करती है। ब्लंट शब्द के अर्थों में दो अंकों की अपेक्षा चार अंक सदा अच्छे होता है, विशेषतः जब किसी प्रश्न में विभिन्न दृष्टिकोण से विचार करना हो। तीसरा, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व होता है। जिस वर्गों को प्रतिनिधित्व पहले सदन में नहीं हो पाता उसे दूसरे सदन में प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है। और चौथा, कार्य विभाजन से लाभ। जन कल्याणकारी राज्य के विचार को अपना लेने के कारण वर्तमान समय में व्यवस्थापिका के कार्य बहुत अधिक हो गए, इसलिए दोनों मिलकर कार्य संगठन करते हैं। पांचवा, जनमत निर्माण में यह सहायक होता है। छठा, द्विसदनात्मक व्यवस्था जनता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है। सातवां, कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि होती है। गैटल कहता है, दो सदन एक दूसरे पर रुकावट का कार्य करके कार्यपालिका को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और इनमें लोकहित की बढ़ोतरी होती है। आठवां, अनुभवी लोगों का सदन। भारत अमेरिका कनाडा इंग्लैंड आदि देशों में उच्च सदन के सदस्य राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक अनुभवी होते हैं, अतः द्वितीय सदन महत्वपूर्ण है, संघ राज्य के लिए उपयुक्त होता है और ऐतिहासिक अनुभव। इसके विपक्ष में तथ्य, पहला, माना जाता है कि प्रभुसत्ता अविभाज्य होती है और लोकतंत्र का यह आधारभूत सिद्धांत है कि प्रभुसत्ता जनता में निर्भर करती है, अतः एक सदन में ही जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व हो जाता है। ABCs लिखते हैं, किसी भी विषय पर लोकमत एक ही हो सकता है, दो नहीं, इसे जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ही सदन होना चाहिए। यदि दूसरा सदन पहले का विरोध करता है तो दुष्ट, और यदि एक सहमत हो जाता तो व्यर्थ है, दूसरा रूढ़िवादी का गढ़ होता है। द्वितीय सदन का आयु सदस्य अपेक्षाकृत आयु में बड़े होते हैं, इसलिए रूढ़िवादी वो होते हैं और प्रगतिशील विचार का विरोध करते हैं। तीसरा, अपव्यय होता है, दो दो विधेयक का खर्च करना संभव नहीं है। चौथा, संगठन की समस्या, दो सदन की व्यवस्था सभी देशों में समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड सदैव असंगीत होता है और कुलीन बंद को छुड़काने का बड़का प्रतिनिधि उसमें नहीं मिलता। पांचवा, दूसरा सदन अनावश्यक होता है, क्योंकि एक समय में सदन द्वारा कानून स्वीकृत करना न तो कुव्याचारित होता है न जल्दीबाजी का परिणाम। छठा, दोनों सदनों में संघर्ष की आशंका, व्यवस्थापिका दो सदन में सदैव गतिरोध होता है और शासन व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, दो सदन रखना ठीक नहीं है, जैसे एक गाड़ी के दोनों तरफ घोड़े जोत दिए जाएं और विरोधी दिशा में जाने का प्रयत्न करें। सातवां, अल्पमत को प्रतिनिधित्व देने हो तो अन्य असंतोषजनक प्रबंध होगा, संघ राज्यों के लिए आवश्यक नहीं। निष्कर्ष, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की लोकप्रियता, दो सदनों की व्यवस्थापिका की इस प्रकार की आलोचना करते हुए भी वर्तमान समय में प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका आवश्यक माना जाता है। इसमें संदेह नहीं कि यदि द्वितीय सदन पूर्ण जागरूकता के साथ सदन द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर पुनर्विचार करे तो लोकप्रिय सदन की जल्दीबाजी और मनमानी पर उपयोगी एवं आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिए जाने पर कानून निर्माण का कार्य अधिक पूर्णता के साथ किए जाने की आशा की जा सकती है। यही कारण है कि केवल कुछ छोटे राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का महत्व, सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका होता है। इसका महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। प्राचीन लोकतंत्रीय राज्य में कार्यपालिका ही सब कुछ होता था, किंतु फिर भी अंतिम रूप से सरकार के समस्त अंगों का उत्तरदायित्व कार्यपालिका पर भी होता है। व्यवस्थापिका द्वारा किए गए कानून का वार्षिक बजट का प्रस्ताव करने का कार्य कार्यपालिका करती है और न्याय विभाग की व्यवस्था भी उसका उत्तरदायित्व कार्यपालिका पर होता है। फाइनर कहते हैं, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हो जाने के बाद शेष शक्तियां कार्यपालिका के पास रहती है। कार्यपालिका का अर्थ, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्य रूप में परिणत करना और इसके आधार पर प्रशासन का संचालन करना होता है। राष्ट्रपति से लेकर साधारण पुलिसमैन तक प्रशासन से संबंधित प्रत्येक कर्मचारी कार्यपालिका का अंग होता है। कार्यपालिका के दो भाग होते हैं, एक राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा स्थायी लोक सेवाएं। राजनीतिक कार्यपालिका विधियों के आधार पर प्रशासन से संबंधित विभिन्न विभागों के संदर्भ में नीति निर्धारित करती है और अस्थायी सेवा वर्ग समय नीति निर्माण में सहायता देता है एवं प्रमुख रूप से नीतियों को क्रियान्वित करता है। संकुचित अर्थ में कार्यपालिका शब्द का प्रयोग राजनीतिक कार्यपालिका के लिए ही किया जाता है। कार्यपालिका के प्रकार, एक नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका है, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नाम मात्र की कार्यपालिका का तात्पर्य उस पदाधिकार से होता है जिस संविधान के द्वारा समस्त प्रशासनिक शक्ति प्रदान की गई हो, परंतु व्यवहार में जिस प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग उसके विवेक के द्वारा न हो। और वास्तविक कार्यपालिका ऐसा होता है जिसके द्वारा वास्तव में शक्ति का प्रयोग किया जाए। संस्थात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान द्वारा नाममात्र की कार्यपालिका को जो प्रशासनिक शक्ति प्रदान किया जाती है, व्यवहार में इनका प्रयोग दूसरे द्वारा किया जाता है, क्योंकि इंग्लैंड में महारानी और भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रधान है, परंतु सॉरी राष्ट्रपति और महारानी नाममात्र की कार्यपालिका के प्रधान है और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री बाकी वास्तविक कार्यपालिका है। दूसरा, एकल तथा बहुल कार्यपालिका, संगठन की दृष्टि से दो होते हैं। एकल कार्यपालिका का तात्पर्य ऐसे संगठन से है जिसके अंतर्गत निर्णयात्मक एवं अंतिम रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित हो। शासन की सुविधा की दृष्टि से शक्ति का विभाजन अवश्य किया जाता है, परंतु अंतिम रूप से शासन व्यवस्था के लिए एक ही व्यक्ति उत्तरदायी होता है। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा आदि देशों में एकल व्यवस्था का उदाहरण है। बहुल कार्यपालिका का ऐसे तात्पर्य होता है जिसके अंतिम रूप से कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर समुचित समुदाय में निहित होती है। प्राचीन एथेंस और स्पार्टा में इस प्रकार की बहुल कार्यपालिका थी और स्विट्जरलैंड में इस प्रकार की अभी कार्यपालिका है। स्विट्जरलैंड में सत्ता 7 सदस्यीय एक संघीय परिषद में निवास करती है। नेपोलियन ने एक बार कहा था, 2 अच्छे सेनापतियों की अपेक्षा 1 बुरा सेनापति श्रेष्ठ होता है। अतः एकल कार्यपालिका अधिकांश देशों में विद्यमान है। कार्यपालिका की नियुक्ति की विधि या संगठन, पहला, वंशानुगत पद्धति। इस पद्धति का संबंध राजतंत्र शासन है। इसमें पद की अवधि आजीवन होती है और उत्तराधिकार ज्येष्ठाधिकार कानून द्वारा संचालित होता है। प्राचीन व मध्ययुग में यह सर्वाधिक प्रचलित विधि रही है और वर्तमान समय में लोकप्रिय नहीं है, परंतु ब्रिटेन, ईरान, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मन आदि राज्यों में नाममात्र के कार्यपालिका की नियुक्ति इसी पद्धति में होती है। दूसरा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। कुछ देशों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। बोलिविया, मेक्सिको, ब्राजील, पेरू आदि लैटिन अमेरिका राज्यों में राष्ट्रपति को सर्वसाधारण जनता ही निर्वाचित करती है। देखने में यह लोकतंत्र का अनुकूल और आकर्षक है, परंतु जनता द्वारा सही चुनने पर अच्छे एवं योग्य व्यक्ति नहीं चुने जा सकते। तीसरा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इस पद्धति के अनुसार जनता सर्वसाधारण द्वारा एक निर्वाचन मंडल का निर्माण किया जाता है और निर्वाचक मंडल द्वारा कार्यकारिणी का चुनाव किया जाता है। अमेरिका और भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रकार होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। चौथा, इस पद्धति में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका द्वारा चुना जाता है। सोवियत संघ एवं स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका प्रधान के चुनाव की यही पद्धति है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में राजा या राष्ट्रपति द्वारा नाममात्र की कार्यपालिका होती है, अतः इन शासन व्यवस्थाओं में नाममात्र की कार्यपालिका की अपेक्षा वास्तविक कार्यपालिका अथवा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन में जिस राजनीतिक दल को हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त होता है, उसके सम्राट द्वारा उस दल के नेता को प्रधान पद पर नियुक्त की जाती है और इसी व्यक्ति द्वारा अपने ही व्यक्तियों के राजनीतिक दल अपने ही राजनीतिक दल के सहयोगियों की टीम चुनकर मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। भारत में भी यही पद्धति है और यही सर्वाधिक संतोषजनक पद्धति है। कार्यपालिका के निम्नांकित कार्य हैं: जनकल्याणकारी, राज्य की विचारधारा का स्वाभाविक परिमाण राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है। जैसा कि लिप्सन लिखते हैं, राज्य के कार्यों में प्रत्येक वृद्धि ने कार्यपालिका के कार्यों और शक्ति में वृद्धि कर दी है। पहला, आंतरिक शासन संबंधी कार्य। प्रत्येक राज्य राजनीतिक रूप से संगठित समाज होता है और प्रथम आवश्यकता शांति और व्यवस्था बनाए रखना है, जो कार्यपालिका करता है। व्यापार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समस्त सुविधाओं की व्यवस्था, कृषि पर नियंत्रण आदि कार्य और अधिकार की पदोन्नति, पदच्युति, प्रशासनिक नियुक्ति की जाती है। दूसरा, वैदेशिक संबंधों का संचालन। वैज्ञानिक प्रगति तथा राजनीतिक चेतना ने वैदेशिक अधिक महत्वपूर्ण कर दिया, अतः कार्यपालिका विदेश में अपने देश के प्रतिनिधि नियुक्त करती है और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समझौतियां करती है, परंतु समानता विदेश व्यवस्थापिका विदेश नीति पर नियंत्रण रखती है। तीसरा, सैनिक कार्य। समानता राज्य की कार्यपालिका का प्रधान सेना के सभी अंगों का प्रधान होता है। चौथा, विधि निर्माण संबंधी कार्य। कार्यपालिका के विधि निर्माण संबंधी कार्य बहुत कुछ सीमा तक शासन व्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करते हैं। संस्थात्मक शासन में कार्यपालिका विधि निर्माण के क्षेत्र में व्यवस्थापिका का निर्वित करती है और विशेष परिस्थितियों में लोकप्रिय सदन को भंग करते हुए नव निर्वाचन का आदेश दे सकती है। इसके अतिरिक्त जिस समय व्यवस्थापिका अधिवेशन नहीं होती है, उस समय आवश्यकता पड़ने पर कार्यपालिका अध्यादेश जारी करती है। पांचवा, वित्तीय कार्य। वार्षिक बजट स्वीकृत करने का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा होता है, लेकिन बनाया इसे कार्यपालिका द्वारा जाता है। छठा, न्याय संबंधी कार्य। प्रत्येक राज्य में कार्यपालिका को कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा करके दंड कम कर सकती है, सर्वक्षमा की शक्ति होती है और निरीक्षण के अंतर्गत कार्य करने वाले सरकारी विभागों को अर्थ न्यायिक कोटे के विभागात्मक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उदाहरणार्थ, ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय अपने प्रशासनिक कार्यों के सिलसिले में लोगों पर जुर्माने कर सकता है और हर्जाना वसूल सकता है। सातवां, विविध कार्य। उपयुक्त के अंतर्गत अनेक देशों में कार्यपालिका को उपाधियां वितरित करने का अधिकार भी होता है। कुछ देशों में विशिष्ट सेवा के बदले पेंशन या अन्य प्रकार की सहायता देने का अधिकार भी है, परंतु जनकल्याणकारी राज्य के विचारधारा के कारण कार्यपालिका के कार्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। कार्यपालिका के आवश्यक गुण निम्नांकित हैं: एक, कर्तव्य। कार्यपालिका को व्यवहार में बहुत अधिक कर्तव्यपरायण होनी चाहिए और उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक होकर सार्वजनिक कल्याण की भावना को दृष्टि से पूरा करना चाहिए। दूसरा, कार्यकुशल होना चाहिए, ढुलमुल प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। तीसरा, शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। चौथा, ईमानदारी और सच्चाई होनी चाहिए। पांचवा, निष्पक्ष होकर काम करें, वर्ग संप्रदाय से दूर रहें। और छठा, गोपनीयता। आंतरिक और बाहरी प्रशासन के क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए गोपनीयता बरती जानी चाहिए। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका से संबंध। सरकार के यद्यपि तीन अलग अलग अंग हैं, परंतु इस प्रकार के तीन अलग अलग अंगों के होते हुए भी उसी प्रकार एक अंग इकाई है जिस प्रकार के अंग इकाई मानव शरीर होता है। जिस प्रकार मानव शरीर कार्य कर सके, इसके लिए शरीर के विभिन्न अंगों में सहयोग नितांत आवश्यक है। उसी प्रकार का सरकार के अंगों में विशेषतया व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग नितांत आवश्यक है। व्यवहार में चाहे संस्थात्मक शासन हो या अध्यात्मक शासन, सरकार के इन दोनों अंगों में संबंध पाया जाता है। संस्थात्मक शासन, सैद्धांतिक स्थिति, कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण। संस्थात्मक शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती है तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायित्व का तात्पर्य यह है कि वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल लोकप्रिय सदन के अधीन होता है। मंत्रिमंडल लोकप्रिय सदन की इच्छानुसार ही कार्य करता है। उस समय तक वह पद पर बना रहता जब तक उसे लोकप्रिय सदन का व्यवहार विश्वास हो। संघीय व्यवस्था में संसद के द्वारा मंत्रिमंडल पर निम्न शासन संन्यास करता है: एक, संसद का अधिकार है कि संसद के अधिवेशनों में मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रशासनिक संबंध में प्रश्न पूछे। दूसरा, कानूनों को प्रस्ताव लाकर सभी विषयों पर विचार स्थगित करके गंभीर घटनाओं पर विचार करने को कहता है। तीसरा, विधेयकों की नीति की अस्वीकृति कर देती है। चौथा, बजट पर कटौती कर सकती है। पांचवा, प्रशासनिक जाँच का मतलब कि कार्यपालिका के कार्यों की जाँच हेतु प्रशासनिक जांच एजेंसी बना सकती है। छठा, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। 1979 में अविश्वास प्रस्ताव के कारण भारत में देसाई मंत्रिमंडल को और ब्रिटेन में कैलहन मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना था। इस प्रकार 90 में बीपी सिंह मंत्रिमंडल को त्याग देना था। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से संसद मंत्रिमंडल के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखती है, और यदि संसद मंत्रिमंडल के कार्य करने के ढंग से संतुष्ट हो, लोकप्रिय सदन द्वारा अविश्वासता का प्राप्त कर इसको गिराया जा सकता है। व्यवहार में सैद्धांतिक दृष्टि से लोकप्रिय सदन मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखता है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल संसद के कार्यों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। मंत्रिमंडल के सदस्य अनिवार्य रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। व्यवस्थापिका में बैठते, विचार विमर्श में भाग लेते, विधेयक प्रस्तावित करते और पक्ष विपक्ष में भाषण देते और मतदान में भी हिस्सा लेते हैं, और विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक कार्यपालिका प्रधान के हस्ताक्षर से ही कानून बनते हैं, अतः कार्यपालिका प्रधान इन पर निशेषाधिकार लागू कर सकता है। इसी प्रकार से वित्त मंत्री जिस रूप में बजट पेश करता है, उसी रूप में संसद के द्वारा बजट को स्वीकार कर लिया जाता है। विभाग के अंतर्गत जिस राजनीतिक दल के हाथ में शासन होती है, उस राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण सदस्य मंत्रिमंडल में होते हैं और दरिया संगठन पर नियंत्रण होता है। इस प्रधानमंत्री का समर्थन करने में बाध्य होते हैं, क्योंकि अवधि निश्चित अवधि पूरा करने के पूर्व अपना पद छोड़ना नहीं चाहते। इसका संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन और वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल का कार्यकाल एक दूसरे के विश्वास पर निर्भर करता है। वास्तव में मंत्रिमंडल और संसद का पारस्परिक संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल है या मिला जुला मंत्रिमंडल। अध्यात्मक शासन पद्धति शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होता है, और इसके अंतर्गत सैद्धांतिक दृष्टि से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर पृथक होती है। अतः राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को संदेश भेज सकता है और उसके द्वारा आदेश भी जारी किया जा सकता है, जिसका प्रभाव कानून के समान ही होता है। इस प्रकार संस्थात्मक शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, परंतु अध्यात्मक शासन में कम घनिष्ठ होता है। व्यवस्थापिका की सत्ता का ह्रास और कार्यपालिका की सत्ता में वृद्धि। सरकार के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता है, क्योंकि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून के आधार पर ही कार्यपालिका शासन करती तथा न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका शासन का मूल आधार है। इसके अतिरिक्त व्यवस्थापिका जनता द्वारा निर्वाचित संस्था है, यह जन आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करती है। इस कारण ही लोकतंत्र में इसका बहुत अधिक महत्व होता है। बावजूद आज देखा जा रहा है कि लोग व्यवस्थापिका की शक्ति में ह्रास निरंतर होता जा रहा है और कार्यपालिका निरंतर अपना विस्तार करती जा रही है। इसके निम्न कारण: एक, साधारण योग्यता के व्यक्तियों का चुनाव। व्यवस्थापिका के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर साधारण योग्यता में होते हैं, परंतु कार्यपालिका में विशेषज्ञ व्यक्ति ही होते हैं। चौथा, जनकल्याणकारी राज्य की धारणा से राज्य के कार्य अधिक बढ़ गए हैं और बढ़े हुए कार्य को कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है, जिससे व्यवस्थापिका की शक्ति में कमी और कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि होती है। तीसरा, दलीय पद्धति के विकास ने व्यवस्थापिका की शक्ति में कमी की है और कार्यकाल की शक्ति में वृद्धि की है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत दल के समर्थन पर टिकी हुई कार्यकाल बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त करते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन आधुनिक समस्याओं की जटिलता के समाधान के लिए जिस विशेष ज्ञान, अनुभव और योग्यता की आवश्यकता होती है, कार्यपालिका के सदस्यों के पास होती है, व्यवस्थापिका के नियोजन होते हैं। छठा, नियोजन अधिकांश प्रगतिशील द्वारा अधिकांश आर्थिक विकास के लिए नियोजन की पद्धति अपनाई गई है, और पद्धति के अंतर्गत योजना तैयार करने कार्यों में परिणत कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। सातवां, व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है, और कहने के लिए यह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, परंतु व्यवहार में अपने बहुमत के बल पर तथा दलीय अनुशासन के नाम पर सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका पर हावी रहता है। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास करने की शक्ति तो केवल कहने भर के लिए है, अधिक वास्तविक शक्ति तो मंत्रिमंडल द्वारा व्यवस्थापिका को विघटित करने की है। इसी स्थिति के कारण व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल की कठपुतली मात्र बनकर रह जाती है। न्यायपालिका, न्यायपालिका का महत्व। व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, और इसके साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ विशेष स्वार्थ भी होते हैं। व्यक्ति के विचारों और उसके स्वार्थों में इस प्रकार के भेद होने के कारण उसमें परस्पर संगत नितांत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में शासक वर्ग की अपनी स्थिति को दुरुपयोग कर सकते हैं, तथा व्यक्तियों के पारस्परिक विरोधों को हल करने और शासक वर्ग की अपनी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य करने के लिए एक सत्ता आवश्यक है, जिस सत्ता को न्यायपालिका कहते हैं। राज्य कार्यकाल से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में न्याय विभाग अस्तित्व में रहा है। राज्य में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका व्यवस्था चाहे कितनी भी पूर्ण और श्रेष्ठ क्यों न हो, परंतु यदि न्याय करने में पक्षपात किया जाता है और अनावश्यक व्यय और विलंब होता है, तो न्याय विभाग में अन्य किसी प्रकार का दोष है, तो जनजीवन जीवन नितांत दुखपूर्ण हो जाएगा। यह रिकॉर्डिंग पिंकेश कुमार के द्वारा तुलनात्मक बीए प्रथम वर्ष हेतु प्रथम पत्र के लिए पुरहा दिन की पुस्तक के द्वारा सुजीत कुमार हेतु की गई है।